आज जो हम आपके सब्जेक्ट लेके आए हैं वो है इकोनॉमिक, और हम बात करेंगे उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा सप्लाई एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर पर। जी हाँ, और हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष चुग जी, जो कि रीजनल डायरेक्टर कोलकाता से है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
डियर लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सप्लाई। द थ्योरी ऑफ सप्लाई इज वेरी मच नेसेसरी एज द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्राइसेस। जब हम सप्लाई का बात करेंगे तो हमारा माइंडसेट एक प्रोड्यूसर की तरह होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसी बात आएगी जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि व्हाई डिमांड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाई वी आर सप्लाइंग मोर एट हायर प्राइसेस। वी हैव वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन दैट चैप्टर, दैट वुड बी मोर क्लियर टू यू हाउ सप्लाई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइक दैट ऑफ डिमांड। आज के हमारे डिस्कशन में हम बात करेंगे सप्लाई की, सप्लाई फंक्शन की, लॉ ऑफ सप्लाई की और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। लर्नर्स, अगर हम नॉर्मल और यू इन अ कॉमन पार्लेंस और आम भाषा में हम बात करें तो सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट है जो मार्केट में सेल के लिए ऑफर होता है। सो द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन आई वॉन्ट टू गिव यू, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। और सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है। कभी आपको कहा जाए कि देखकर आइए कि वाटर टैंक में कितना पानी है तो आप क्या कहेंगे? आप वहां देखते भी होंगे, जब उसका चेकिंग होता है तो वहां लिखा जाता है कि 2:10 पर 11 तारीख को या 25 तारीख को या 28 तारीख को इतना स्टॉक था। स्टॉक हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम से नापा जाता है, एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे। तो हम ये कह सकते हैं स्टॉक इज अ वेरिएबल, बट इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। 10:11 पर 28 तारीख को या 12:02 पर 28 सितंबर 2020 को इतना पानी था, दैट इज द स्टॉक। लेकिन अगर हम सप्लाई की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 2:00 to 5:00 तक इतना सप्लाई हुआ पानी का, दैट वुड बी अ सप्लाई। सप्लाई हैज टाइम डिमेंशन, वेयर एज स्टॉक हैज नो टाइम डिमेंशन। Stock is measured at a point of time, whereas supply is measured over a period of time. So, if you want to note it down, please note it down. Supply should be carefully distinguished from the stock. Stock is that volume of a commodity in existence which is kept ready in godown at certain point of time. Please note it, which is kept ready in godowns or warehouses at a particular or a specific point of time, certain time. It is total amount of a commodity which can be bought into a market. I'm talking about supply. Supply is the total amount of commodity which can be bought into the market for sale at a short notice. But it is not necessarily all the stock of a commodity is being offered for sale. Aapke paas godown mein 50,000 unit pada hai. Abhi aap 10,000 unit market mein bhej rahe hain sale ke liye, to aapka 10,000 unit sale ho gaya, lekin 40,000 jo hai, that would be a stock which is measured at a point of time, whereas the supply is measured over a period of time. So, supply means the quantity which is actually brought in the market for sale. Isko hum ek example se dekhenge. In a market, on a particular day and at a particular time, 1,000 quintals of wheat are offered for sale at rupees 500 per quintal, then 1,000 quintal is the supply of the wheat at that prices. But there might be, if I'm talking about stock, that stock of 10,000 quintal at that time, and we have offered only 1,000 quintal. So still we have 900 in the stock that we have not offered for sale. So 900 is the stock, and 9,000 is the stock, and 1,000 is the supply. The stock is the quantity of the good that could not be sold. The supply is the quantity that would be sold at a given price. If the price is low, the producer would offer less for sale and keep more in stock or godowns. And accordingly, इसी से हमारा law of supply बनता है. Law of supply क्या है? More is offered at higher prices and less is offered at lower prices. So accordingly, we have the law of supply, and we can differentiate between the supply and stock. If price is low, the producer would offer less for sale and keep more in the stock or in godown. Similarly, if the price is high, the producer would draw more from their stock and offer more quantity of the commodity for sale. Thus, we can say that stock and supply are two different variables. But in case of perishable, please note it down. In case of perishable goods, perishables like fruit, vegetable, ice cream, milk, flowers, vegetables, in that case, stock and supply are always equal. Jitna stock aata hai, uska supply kar dete hai. We won't take any risk, because ultimately this would be a loss for us. This is because the commodity cannot be stored. The whole quantity of such commodity is offered for sale. The whole quantity of such commodity is offered for sale. Thus, it is only in case of durable goods that we can store the goods, we can create stock, we can have a good warehouses, and we can store them, and we can store them without any loss of utility. So, learners, yahan char baaton ka aapko dhyan rakhna hai. Pehli baat, stock ek point of time pe measure hota hai. लेकिन supply over a period of time, stock भी flow है, supply भी flow concept. Sorry, stock is a static concept and supply is a flow concept. Stock has no time dimension, whereas supply has time dimension. A water in a reservoir at a particular point of time is a stock. अगर एक reservoir में 10 बजकर 12 मिनट पर पानी का मेजरमेंट किया, हमने उसका वॉल्यूम चेक किया, वो एक स्टॉक है. लेकिन हमने पानी 10 बजे से लेकर शाम तक हमने कितना पानी सप्लाई किया, वो सप्लाई. द सेकेंड पॉइंट आई टोल्ड यू दैट, प्लीज नोट डाउन इफ यू वॉन्ट टू डॉट नॉट जोट इट डाउन, यू प्लीज सी, द सप्लाई इज द क्वांटिटी दैट वुड बी सोल्ड एट अ गिवन प्राइस. इफ द प्राइस इज लो, the producer would offer less for sale and keep more in stock or in godown. Please jot it down. These are the points you have to remember. Similarly, the third point is, if the price is high, the producer would draw more from stock, from their stock, and offer more for sale. This is point number three. The first is definition, and the second are two conditions. Price condition, high price and low price. The fourth point, which is very important, that the quantity of the commodity is offered for sale. In case of perishable goods, the whole quantity is offered for sale. Thus, it is only the case in perishable that supply and stock are always equal. This is point number four. I add one more point. Point number five, it is only the case of durable goods that the supply may differ from the stock in case of durable goods, because durable goods can be stored without any loss of utility. So these are the five points that you have to remember The first is the definition. The another two are the points. The points is related to the cases, that the price case one, price case two. The third is the nature of commodity. The nature of commodity is a perishable. And point number five, again, the nature of commodity, the commodity is durable. I hope it is clear to everyone. So now we move to the determinants of prices. Determinants of prices, first you jot down all the determinants. The first determinant is the price of commodity. The first determinant is price of commodity. The second is price of related good. The third is cost of production or the price of factor input. The fourth point is technology, state of technology, or you can call it as a improved or obsolete technology. The fifth point is means of transport and communication. Sixth point is objective or goal of producer. Seventh point is number of sellers. Eighth point is future price expectation. Ninth determinant is supply of agricultural produce. Tenth point is political disturbance. 11th point is the government policy, that is taxation and subsidies. Then the last point is agreement among production. I have taken more points than your self-learning material, so that just to add on more knowledge for you. Bachcho, hamara jo determinants hota hai, the determinants of supply. Determinants means what are the factors that determine the magnitude of supply. Supply kab badhta hai, kab girta hai, kaise badhta hai, kaise girta hai. और उसको डिटरमिन करने के लिए क्या सिर्फ प्राइस जिम्मेदार है? ओनली प्राइस इज रिस्पॉन्सिबल और अदर फैक्टर्स आर देयर दैट दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट. जैसे हमने एक बात करी नेचर ऑफ गुड्स. नेचर ऑफ गुड भी एक डिटरमिनेंट है. अगर पेरिशेबल गुड है तो हम उसकी सप्लाई को ज्यादा करेंगे, स्टॉक पे कम फोकस करेंगे. लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड है, I gave you this point number five, if you remember, it is only in the case of durable goods that the supply may differ from the stock of the commodity. Whereas in case of perishable goods, supply and stock of the goods are always equal. Nahi rakhenge stock uska, kharab ho jayega, uska cost hume hi bear karna padega. Hum pehla point dekhenge, price, the price of commodity in question. The supply of commodity depends upon the price of that commodity, other thing being equal. Baki cheezon ko chhod dijiye, seller of a commodity are normally willing to sell more of it if the price is higher than if it is low. Higher the price, more would be supply. Lesser the price, less would be supply. And here only we have the law of supply. The law of supply states that other things remaining the same, there exists positive or direct relationship between price and quantity supply. Higher the prices, more would be supply. Lower the supply, lower would be the supply. Lower the price, lower would be the supply. There exists direct or positive relationship between price and quantity supply. Other thing remaining the same, ceteris paribus, jada price hai, jada supply hoga, kam price hai, kam supply. Number two point, the second determinant, supply of related goods. Yahan par students, hum aapko bataunga ki agar aap do cheeze produce karte, aapko lag raha hai ki jis commodity mein price commanding mil raha hai, to aap supply us pe dhyan denge. I'll give you one example. If the price of substitute goes up, मान लीजिए टी और कॉफी, टी का प्राइस बढ़ गया, प्रोड्यूसर वुड बी टेम्प्टेड टू डाइवर्ट देयर रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ टी. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस रिलेटिवली टू द प्राइस ऑफ कॉफी, देन द अवेलेबल लैंड, द कल्टिवेटेबल लैंड शैल बी यूज इन द कल्टिवेशन ऑफ टी in place of coffee. Entire production, factors of production would be used in the production of coffee, because in the production of tea, because the price of tea has relatively more. Supply of coffee will fall accordingly. We thus expect other things remaining the same. The supply of commodity falls as the price of commodity increases, or as the price of commodity falls. I hope the second point is clear to you. Learners, pehle point mein direct humne commodity ki price ki baat ki. The second determinant mein humne baat kari thi ki hum price ki baat kar rahe hain coffee ki. Agar coffee, agar maan lijiye tea ka humne baat kiya tha ki tea ka price badh raha hai, to hum tea ke production pe zyada dhyan denge aur hum कमोडिटी किसकी गिरा देंगे, सप्लाई किसकी गिरा देंगे, कॉफी की गिरा देंगे. द थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ इनपुट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे लर्नर, इफ देयर इज एन इंक्रीज, मान लीजिए आप कोई चीज 10 रुपए में बनाते हैं और 12 रुपए में बेचते हैं, आपका प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए. मान लीजिए आपका जो 10 रुपए का कॉस्ट था वो बढ़कर 11 रुपए हो गया, आपका मार्जिन कितना रह गया? 1 रुपया. अगर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आपको कम है तो आप क्या करेंगे? उसका सप्लाई नहीं करेंगे, आप अपना फोकस ऐसे प्रोडक्शन पे करेंगे जिसमें आपको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वुड बी मोर. ध्यान से सुनिएगा, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है या तो हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, या हमारा पावर महंगा हो गया, फ्यूल महंगा हो गया, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं. आज पेट्रोल बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, डीजल का रेट बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया है, हर चीज का रेट बढ़ गया. डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आता है? डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है प्रोड्यूसर पर. प्रोड्यूसर क्या करते हैं? वो कहते हैं हमारा मार्जिन कम है. अगर हम मार्जिन को नहीं देखेंगे तो हम भी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट कैसे बियर करेंगे? सो if there is an increase in the cost of production due to the increase in the cost of various factors of production like raw material, power, fuel and other intermediate goods, then this will result in decrease in supply. aap apni supply ko kam kar denge. kyon kam karenge? the reason is the margin of profit. hum kehte hain na ki is bar nahi ho raha hai. aap furniture dekhiye, jo furniture manufacturers hain, जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स है, वो कहते हैं पीछे से ही हमारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा है, इसीलिए हमने प्राइसेस को बढ़ाया है. आज अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में क्या होगा? प्राइस बढ़ा दिया गया तो ठीक है, प्राइस नहीं बढ़ा रहे सर, ये चीज हम नहीं बना पाते क्योंकि अभी ड्राई फ्रूट बहुत महंगा आ रहा है, हमारा कॉस्ट नहीं कवर अप कर पाते, तो वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड दिस कमोडिटी फॉर यू बिकॉज द प्राइसेस आर सोरिंग अप. So these are also the factors that influence the supply of a commodity. कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ प्राइस और इनको देख के आप सप्लाई नहीं करते हैं, सप्लाई बढ़ने गिरने के और भी कारण होते हैं. The fourth point is technology. लर्नर, technology भी प्राइस को ही इम्पैक्ट करती है. अगर आपकी technology नहीं है, उसका power consumption कम है, या उसका प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो आप क्या करेंगे? आप सप्लाई को ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि एक तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर रही है. जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो डेफिनेटली मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा. अब इसी बात को हम लिखेंगे कैसे, आप ध्यान से सुनिएगा. इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी. इम्प्रूव टेक्नोलॉजी क्या होती है? कॉस्ट को कम करेगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, एफिशिएंसी को बढ़ाएगी. और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी क्या है? धीरे धीरे चलती है, टाइम ज्यादा खाती है, पेट्रोल ज्यादा खाती, पावर कंजम्पशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या करेगी? प्राइस को बढ़ाएगी. सो इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या हो गया? आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया. और जब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है, दैट इन टर्न इंक्रीजेस द सप्लाई ओवर टाइम. टेक्निकल नो हाउ, चेंजेस, डिस्कवरीज, इनोवेशंस, these are the areas that help to raise the productivity of factors, and this contributes to the raising of the supply upward. So I hope the fourth point is also clear. Baat ghoom phir ke aati hai hamara profitability par. The fifth point is the means of transport and communication. Jitna achha transport hoga, jitna achha communication hoga, utne hi hamare markets badhenge, utna achha hamare paas raw material aayega, utna achha hamara movement hoga, उतना अच्छा हमारा लेबर का मूवमेंट होगा, उतना अच्छा टाइम कंजम्पशन कम होगा. तो ये सब बातें जो होती है प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है. इम्प्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मे इंक्रीज द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इफ इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर एंकरेज, और इन केस ऑफ शॉर्ट सप्लाई कैन बी रश फ्रॉम द सरप्लस एरिया टू द डेफिशिएंट एरिया. You can move material. Material नहीं है तो material की सस्ती जगह से ला सकते हैं हम. Cost कम करेंगे हम कैसे भी करके करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा developed means of transport or communication होना चाहिए. If the developed means of transport and communication are reused, then we can import more. It will create the more profitability. और आप देखिए ये भी होता है कि आपने export ज्यादा कर दिया तो आपके डोमेस्टिक मार्केट में स्केयरसिटी नहीं आ जाए. आप हर चीज को बैलेंस करके चलिएगा. तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 था. देन वी मूव टू पॉइंट नंबर 6. द सिक्स्थ डिटरमिनेंट इज गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. लर्नर जब हम गोल्स की बात करते हैं सबके अलग अलग गोल्स होते हैं. एक प्रोड्यूसर कहता है मुझे प्रॉफिट चाहिए, एक प्रोड्यूसर कहता है मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एक प्रोड्यूसर कहता है मुझे मार्केट कवरेज कर, एक प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे सेल्स मैक्सिमाइजेशन कर. सो सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी. ऑर्डिनरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी फर्म ट्राइज टू अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट, बट देयर आर सिचुएशंस वेयर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर may be induced to increase the supply of the commodity, not because it brings more profit or profitability for them, but because they want to create their goodwill, they want to generate employment opportunities, because they want to cover more and more market, because they want to cover their, they want to create their image in the market, their goodwill in the market. If the firm aims to maximize sales or revenue rather than profit, then supply in the market would be larger. So goal is also very important. Yadi mera uddeshya hai ki mujhe rozgar ke sadhan logon ke liye banane hain, mujhe rozgar ke avsar dene hain, to rozgar ke avsar dunga to rozgarit kiya logon ko to rozgarit se mera utpadan to hona hi hai. Utpadan hoga to utpadan ko mujhe kya karna padega? उत्पादन को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूर्ति में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उत्पादन नहीं, उत्पादन करके मुझे रखना तो नहीं है स्टॉक में. स्टॉक में रखूंगा तो स्टॉक से तो मुझे देखना पड़ेगा कि सप्लाई करनी है कब करनी है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे उसे पूर्ति में सप्लाई में कन्वर्ट करना जरूरी है. अगर मैं नहीं करूंगा उसका उसको सप्लाई में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी और मेरा प्रोडक्शन नहीं बिकेगा तो मैं कैसे लोगों की, जिन लोगों ने उस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया जैसे लैंड लेबर कैपिटल, कैसे मैं उनके खर्चों का भुगतान कर पाऊंगा. द सेवेंथ पॉइंट इज नंबर ऑफ सेलर. इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं बताऊंगा आपको, कोई टाइम था मार्केट में साइकिल से पेडलर्स बनाता था. अब आज देखिए आप मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं. कोई टाइम था जब मार्केट में सिर्फ स्कूटर बजाज बनाता, आज मार्केट में ज्यादा प्लेयर्स हैं. जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे उतनी ज्यादा सप्लाई होगी. द सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेलर्स. एंट्री ऑफ मोर सेलर्स विल इंक्रीज एंड एग्जिट विल डिक्रीज द सप्लाई. जितना ज्यादा सेलर होगा उतना ज्यादा सप्लाई. यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा जो हमेशा मैं बताता भी हूं कि जब हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक प्लूरल है, लेकिन इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करते हैं। फर्म्स क्या है? मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन फर्म्स है, ये तीनों का तीनों फर्म लेदर गुड्स बना, ये तीनों फर्म किसमें आएगी? इन तीनों को हम किसमें डालेंगे? लेदर एंड गुड इंडस्ट्री। अगर एक ए बी सी फर्म और आती है लेदर, तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर। जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हम सारी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, लेदर इंडस्ट्री, फास्ट फूड इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, वेयर एज जब हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ फर्म। तो जब फर्म बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। फर्म का मतलब क्या है? सेलर्स, सेलर्स ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। आई होप दिस सेवेंथ पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। Any question, if you have any question, please pose your question. हम next point पे बढ़ते हैं, point number 8, the 8th determinant, the future price expectation. आप देखते हैं producers and sellers are very small. Old market में अगर पता लगे कि कल price बढ़ जाएगी तो आज interest कम लेता है goldsmith, कहते कल ले लेना परसों ले लेना। आप देखिए पता लगे पेट्रोल पंप्स में कि कल पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगा तो आज रात देर रात तक पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा, जो स्टॉक है वो कल सप्लाई करेंगे, भाई उस पे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इफ द सेलर फियर दैट द ट्रेंड ऑफ द फॉल इन प्राइस विल कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर, दे विल अडॉप्ट पैनिक सेलिंग, there will be the supply will increase. उनको पता लगेगा कि कल price और गिर जाएगी, आज निकाल दो आज बेच दो, लेकिन उन्हें पता लगे कि कल price बढ़ने वाली तो वो क्या करेंगे? वो अपनी supply को stock में बदल देंगे और जब price बढ़ेगा तब supply को convert करें। So on the other hand, if expectation of rise in future prices are there, then this will induce them to withhold the supply and the supply will contract. So this is the strategies that the producers are using in order to convert the stock into supply or to retain with the stock or to hold the stock. The ninth point, supply of agricultural produce. As regards agricultural commodities, better rainfall, अच्छा इरिगेशन, अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छे सीड, हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड, द बेटर कल्टीवेशन, द प्रॉपर नर्चरिंग विल ऑलवेज इंक्रीज सप्लाई। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्ररी टू दिस, इफ द सिचुएशंस आर अनफेवरेबल लाइक मॉनसून फेलियर, फ्लड्स, ड्रॉट, फायर, डस्ट स्टॉर्म, pest, earthquake, these are responsible for the decrease in supply. So these are the, their supply is governed by nature. The nature God is responsible for such supply. The 10th point is political disturbance. Political disturbance or war may disorganize or divert channels of trade and thus create scarcity of certain commodities which causes decrease in supply. होता है political disturbance के कारण नहीं कर पाते हैं, political disturbance, strike, curfew, इनके कारण transport communication बंद हो जाता है, नहीं कर पाते हैं supply. 11th point, taxation and subsidies. जब tax बढ़ जाता है profitability ही तो गिरती है. Tax on output, sales, import, etc. also affect the supply. By imposing higher duties, government may restrict the supply of foreign commodities to encourage its production in home. Government may also restrict production of certain articles for reasons of health, like opium, for example. Whereas subsidies will reduce the cost and induce producer to increase the supply. सब्सिडीज मिलती है किसमें मिलती है, एसेंशियल कमोडिटी सब्सिडीज। मतलब सब्सिडीज का मतलब ये मत सोचिए कि फार्मर्स को पैसा मिलता है, नो, फार्मर्स को सब्सिडीज मिलती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, वाटर बिल पे, सस्ता इरिगेशन, सस्ता केमिकल फर्टिलाइजर, फ्री हाइड ऑफ वेराइटीज ऑफ सीड, दिस इज वॉट सब्सिडी। अगर ये खर्चा फार्मर का बचेगा तो जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो उनका जो भी होगा प्रॉफिटेबिलिटी होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो जस्ट सब्सिडीज विल हेल्प द फार्मर्स, नॉट ओनली फार्मर्स बट देर आर सर्टेन प्रोड्यूसर्स जिनके लिए सब्सिडीज एक मोटिवेशन, एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का भी काम करता है। तो जब टैक्स होगा सप्लाई गिर जाती है, जब सब्सिडीज होती है तो पर्पस क्या होता है सब्सिडीज का? सर, सब्सिडीज का पर्पस ये होता है कि आपको मोटिवेट करे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए ताकि आप ज्यादा प्रोड्यूस करें, ज्यादा सप्लाई करें, ज्यादा आप अपने स्टॉक को सप्लाई में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट टू पॉइंट आई वॉन्ट टू एड ऑन, गवर्नमेंट पॉलिसी। द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अ रिडक्शन इन कोर्ट्स, टैरिफ ऑन फॉरेन गुड्स, पॉलिसी टू रिड्यूस द सप्लाई, पॉलिसीज टू इंक्रीज द सप्लाई, दीज आर ऑल्सो द फैक्टर्स वेयर सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड। देन देयर इज वन मोर पॉइंट, अग्रीमेंट अमंग प्रोडक्शन। Sometimes what is happening, the producer of commodities form their association, cartel बना लेते हैं और वो decide करते हैं कि क्या price होगा, कैसे हम supply करेंगे, कब हमें scarcity करनी है। So this is also point to be noted here. Although it is not the part of your determinant in your self-learning material, at secondary level, I think only 9-8 points are sufficient. Even in your book also, only 9 points or 8 points are given. That is the price of commodity, the number 2 is price of related goods, number 3 the cost of input, number 4 technology, state of technology, number 5 means of transport and communication, number 6 goals and objectives of the firm, number 7 number of sellers, number 8 price expectation, future price expectation. These are the self-sufficient points at your level, at secondary level I'm talking about. So, in nutshell, जो हमने पढ़ा, हमने ये देखा, the supply of a commodity is a function of the price of the commodity, comma, price of factors of production, state of technology, future number of firms, goal of firm, all together in one bracket will make the supply function. Supply of X commodity is equal to function of curly bracket price of X commodity, price of related good, price of input, technology, government policy and all blah blah blah. This is what the supply function is. This is very complicated functional relationship and we shall not succeed in developing a simple law for supply if we consider what happened to supply of a commodity. When these things, prices of other commodity, prices of other factors of production, all changes, then we have a different concept. Whereas only the price is there, then we have a different concept. So we have to consider and we try our best to, I help you to clear what basically the supply function is. Like, if I'm talking about the law of supply, what is law of supply? Please note it down. The law of supply is formulated on the basis of the first point. The law of supply is just noted down. The law of supply is just opposite to law of demand. The law of supply expresses the relationship between the price of commodity and the quantity supplied. In simple, in a common language, the law of supply states that other thing remaining the same, when price rises, supply rises or supply extends, and when price falls, supply falls. One more definition if you want to jot down. Supply of a commodity states that other things being equal, the higher the price, the greater the quantity supplied. Whereas lower the price, lower would be the quantity supplied. In simple words, the quantity offered for sale varies directly with the price. That is, higher the price, the larger is the supply and vice versa. In other words, If no disturbance is caused by natural and other external factors in field of production, every rise in price likely to be accompanied by rise in supply, and every fall in price would be contraction of supply. So you see both the variables move in the same direction. If price rises, supply rises. If price falls, supply price falls. So there is a direct or positive relationship. According to law of supply, there is a direct or positive relationship between price and supply of a commodity. Other things remaining the same, larger and still larger will be supplied at higher prices and get higher prices, and vice versa. That is, if there is a fall in price, lesser will be offered for the same. I hope it is clear to you.